मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के डेली ऑडियो लेक्चर में बात करने के लिए मेरे पास दो विषय हैं। एक है बीमा संशोधन विधेयक जो राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है, और दूसरा है सरकार की स्क्रैप पॉलिसी, या इसे आप कह सकते हैं वाहन स्क्रैप पॉलिसी। वाहन स्क्रैप पॉलिसी को मैं मुख्य विषय के अंतर्गत थोड़े से विस्तार के साथ आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। दोस्तों, तो पहले मैं बात करना चाहूंगा बीमा संशोधन विधेयक पर, जिसे राज्यसभा में पारित किया गया है। देखिए, बीमा संशोधन विधेयक क्या है? अभी तक अगर हम लिबरलाइजेशन से पहले के दौर में जाएं तो बीमा सेक्टर इंडिया के तहत चल ही रहा था और उसमें हमारे लोग धन लगा रहे थे, लेकिन हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह है कि जितने धन की जरूरत थी उतना धन हमारे पास नहीं था। तो इनफैक्ट सच पूछे तो जो हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बात करते हैं वो बाहर से धन प्राप्त करने का ही एक माध्यम है। देखिए, सरकार धन उधार भी ले सकती है, विश्व बैंक से उधार ले ले, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उधार ले ले, एशियन डेवलपमेंट बैंक से उधार ले ले, लेकिन जब हम वहां से उधार लेते हैं तो हमें उस पर ब्याज देना पड़ता है। अगर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से हमारे पास धन आ जा रहा है तो वो तो व्यक्ति इसमें निवेश कर रहा है ना, तो हमें ब्याज नहीं देना पड़ता। इसीलिए खासकर लिबरलाइजेशन के बाद से सरकार ने बहुत से क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति दी। तो जहां तक बीमा सेक्टर का सवाल है तो सन 2000 में इस सेक्टर में 26% तक के निवेश की अनुमति थी, मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मैं कह रहा हूं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की। और इसके बाद 2015 में इसे बढ़ाकर 49% कर दिया गया, 49%, राइट? और अब इसे बढ़ा करके कर दिया गया है 74%। ये आंकड़ा आपके दिमाग में क्लियर हो, पीछे जो मैंने इतिहास की बात बताई है उसे आप भूल सकते हैं लेकिन 74% आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। 74% सरकार को उम्मीद है कि इससे एक साल के अंदर 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए शायद हमारे पास विदेश से निवेश आ जाए। और चूंकि अभी कोविड के कारण इंश्योरेंस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है, यानी कि हमारी जो इसके बीमा कंपनियां हैं उनके पास इतना धन नहीं है कि वो उस मांग को पूरा कर पाएंगी, तो सरकार ने अभी इसमें जो FDI है उसका परसेंटेज बढ़ा दिया है, राइट? ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। यहां मैं थोड़ी सी बात आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे अभी कुछ सेक्टर ऐसे बचे हुए हैं जिसमें सरकार ने FDI जीरो रखी है, मतलब किसी भी तरह के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुमति नहीं दी गई है। यह भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए क्योंकि कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन प्री में पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसमें एटॉमिक एनर्जी का क्षेत्र है ना, परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र है, टोबेको इंडस्ट्री के बारे में कोई FDI की अनुमति नहीं है, जिसमें आप कह लीजिए सिगार इंडस्ट्री है, सिगरेट बनाने की इंडस्ट्री है और जो इससे रिलेटेड इंडस्ट्री होते हैं, इसमें जीरो है। इसी तरह से लॉटरी में भी कोई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है। तो ये सेक्टर आपके दिमाग में रहने चाहिए क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में इसी तरह से क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूं वाहन स्क्रैप नीति, जिसे स्क्रैप नीति भी कहा गया है, इसके ऊपर। इसके माध्यम से मैं थोड़े से अर्थशास्त्र की आपसे बात करूंगा। देखिए, अखबारों में ढेर सारी बातें छपी हुई हैं। अगर आपने कल दूरदर्शन की न्यूज सुनी हो तो इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। हमारे जो मंत्री गडकरी जी हैं उन्होंने इसके बारे में बाकायदे बात की है, पार्लियामेंट में भी इसके बारे में उन्होंने उत्तर दिया है। तो ढेर सारी बातें अवेलेबल हैं लेकिन हो सकता है कि आपने उन पर उतना ध्यान नहीं दिया हो। तो पहली बात तो यह है कि आप इसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानकर चलें। यहां तक कि जो मैंने बीमा संशोधन विधेयक की बात कही है उसे भी आप थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट तो माने। अब जब हम स्क्रैप नीति की बात करते हैं, अब आपने ये सुना है या नहीं सुना है मुझे नहीं मालूम, दूरदर्शन पर इस पर जो बातें की गई थी, लेकिन आइए अब हम इससे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप अपनी कैपेसिटी डेवलप करेंगे और कैसे आप इसके माध्यम से ये जज कर सकेंगे, यानी कि स्वमूल्यांकन कर सकेंगे कि वास्तव में किस तरीके से अर्थव्यवस्था काम करती है, या यूं कह लीजिए कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत किस तरह से प्रैक्टिकली हमारे सामने अवतरित होते हैं, उसे आप समझ सकें, जांच सकें कि आपके अंदर ये कैपेसिटी है या नहीं, राइट? तो देखिए, सरकार ने स्क्रैप नीति घोषित की और स्क्रैप नीति के तहत जो मूल आधार है वो ये कहा गया कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स जैसे ट्रक हैं, बसेस हैं, है ना, जो वाणिज्यिक कामों में लिए जाते हैं, इन्हें 15 साल में स्क्रैप कर दिया जाएगा। स्क्रैप कर दिया जाएगा का मतलब इनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा और इन्हें बाहर कर दिया जाएगा, मतलब ये कूड़ा करकट बन जाएंगे, आप उससे अधिक वर्ष तक उसे नहीं चला सकते। हाँ, अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो उसके लिए 5 साल और है, यानी कि 20 साल के बाद वो बेकार हो जाएंगे। बेकार हो जाएंगे मतलब आप उसको बेच दीजिए। स्क्रैप का मतलब है कि जब आप उसको बेच देंगे, जो भी उसकी कीमत मिले, आपको मान लीजिए कि 5-6 लाख रुपए की गाड़ी है, 25-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये आपको मिल रहे हैं, बेच दीजिए, तो बेचने वाला आप सोच सकते हैं कि क्या करेगा। ये नीति है। अब आपको अनुमान ये लगाना है, या बेहतर होगा कि आप सोच करके देखें कि सरकार की इस नीति लाने से अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा। या सरकार ये नीति लेकर के तो आई है तो डेफिनेटली उसके दिमाग में कोई ना कोई तो लाभ होंगे, तो किस तरह के लाभ इससे हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, सरकार को मिलेंगे, इसके बारे में थोड़ा आप विचार कीजिए। और विचार करते समय जो इकोनॉमी की साइकिल होती है, अर्थव्यवस्था का जो चक्र होता है, उस चक्र को भी ध्यान में रखें कि क्या क्या होगा। आप अनुमान लगाइए कि क्या 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 होगा। और बकायदे गवर्नमेंट ने इन सब की घोषणा की है, हमारे मंत्री जी ने बकायदे कुछ डेटा भी दिए हैं पार्लियामेंट में कहते समय कि ये होंगे। आप जानने की कोशिश कीजिए अपनी तरफ से। अगर आप ये करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि अब आप मेरी आवाज को बंद कर दें और अपने दिमाग से कुछ जानने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा हूं, मैं तो सुनना ही चाह रहा हूं, तो यह आपकी अपनी मर्जी है, अब आप मुझे सुन लें। दोस्तों, अब आप देखिए कि इससे क्या होगा। 15 साल के बाद एक गाड़ी थी वो बेकार कर दी गई, 20 साल के बाद प्राइवेट वाहन थे वो बेकार कर दिए गए। अभी ये वाहन कई साल चलते थे, 15 साल वाला पता लगा कि 20-25 साल चल रहा है, 20 साल वाले पता लगा 25-30 साल चल रहे हैं, आप उन्हें सुधरवाते जा रहे हैं, खटारा बन गई है, फिर भी चलाते जा रहे हैं। और इसके बाद आप चाहें तो उसे फिर सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड गाड़ियां बिक रही हैं। आप देखिए कि बिल्कुल ऐसी गाड़ियां आपको सड़कों पर चलती हुई मिल जाएंगी कि आपको देखने के बाद लगेगा 25-30 साल पुरानी गाड़ियां हैं। अब वो 15-20 साल के बाद खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो गाड़ी जिसके पास थी, जिसको आदत हो गई है, वो क्या करेगा, उसको अपनी गाड़ी खत्म करनी पड़ेगी और फिर नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि नई गाड़ियों की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और तुरंत बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ गाड़ियां तो ऐसी होंगी ना जो 15-20 साल पुरानी हो चुकी हैं, तो मोटर व्हीकल्स की डिमांड बढ़ जाएगी। और जब मोटर व्हीकल्स की डिमांड बढ़ जाएगी तब क्या होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है तो ज्यादा से ज्यादा आपको मोटर व्हीकल तैयार करने हैं, तो रोजगार के अवसर बढ़े। अब आप दूसरी तरफ देखें कि आपने स्क्रैप कर दिया है, इतनी सारी गाड़ियां स्क्रैप हो गई हैं, अब ग्राउंड में खड़ी हैं, पड़ी हैं, तो वो पड़ी थोड़ी रहेंगी, उसमें भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे कि भैया इसमें से ये एल्युमिनियम मिल निकाल लो, इसमें से ये निकाल लो, इसमें से ये निकाल लो, क्योंकि उन चीजों का उपयोग किया जाएगा, तो वहां भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। फिर इधर जब गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, नई नई गाड़ियां अब ज्यादा बिक रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि इसे सरकार को टैक्स मिलेगा? रोजगार ही नहीं बढ़ेंगे, सरकार को टैक्स भी मिलेगा। हमारे मंत्री जी ने कहा कि इसे 30-40 हज़ार करोड़ रुपए का अतिरिक्त GST मिलने की संभावना है। सोच के देखिए, सरकार को इतना लाभ होगा, तो समाज को रोजगार मिल गया, सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिल गया। और ये भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि चूंकि गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाएगी, हमारे यहां देखिए कितनी विदेशी कारें बन रही हैं, तो डिमांड बढ़ गई तो उनको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो हो सकता है कि 10 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास जो विदेशी निवेश है वह भी हमारे यहां आए। समाज को और क्या लाभ होगा, जो पुरानी गाड़ियां हैं, खटारा गाड़ियां हैं, मतलब स्टडी बताती है कि उनसे 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषण होता है, 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषण होता है, वो खटारा गाड़ियां होती हैं, सड़कें खराब करती हैं, और साथ ही साथ वो जो यातायात दुर्घटना है वो भी उनमें ज्यादा होती, पता लगा कि ब्रेक फेल हो गया, पता लगा टायर फट गया, ये सब चीजें होती रहती, पुरानी गाड़ियों में इसकी आशंका ज्यादा रहती है, हमारे पास डेटा है इसके, तो प्रदूषण से भी थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी, या वो थोड़े से नियंत्रण में आएगा, सड़क की जो दुर्घटना है वो भी थोड़ी सी कम होंगी, तो इस तरह के लाभ होंगे। तो अब आप देखें कि स्क्रैप नीति का बेस क्या था। मैंने शुरू में आपको बताया कि पुराने वाहन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खत्म कर दिए जाएंगे, बस ये इसका बेस है। मान लीजिए कि आपने मेरी ये बातें नहीं सुनी है और एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है या प्री में ही ये क्वेश्चन तैयार कर दिया गया इसके आधार पर, तो आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए अपनी तरफ से सोचने की कि इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। प्रश्न छोड़कर के आना तो सबसे आसान रास्ता है और यूपीएससी यही चाहता है कि आपने जिसे पढ़ा नहीं है, जिसे सुना नहीं है, आप अपने दिमाग से उसका उत्तर तैयार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो जब आप प्रशासन में जाएंगे तो आपको अपने दिमाग से ही सब चीजें लेकर करनी पड़ेंगी। तो ये बेसिकली टेस्टिंग ऑफ माइंड है दोस्तों, जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन है सिविल सर्विस का, और उसके लिए परीक्षा का विधान किया गया है। और मैं आप सबसे अर्ज करूंगा कि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो बेहतर होगा कि यदि आप इस पैटर्न को अप्लाई करेंगे तो आपकी जो क्षमता है वो आप पाएंगे कि कितनी रफ्तार के साथ बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, विजय शेरावत जयपुर से, विनय कुमार, अमित कुमार त्रिपाठी सतना मध्य प्रदेश से और संध्या खन्ना बदरवास मध्य प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। आप सब अपना अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का भी ख्याल रखें, क्योंकि देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना का दूसरा आक्रमण अब देश पर हो चुका है। मित्रों इसे हम सबको मिलकर हराना है। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, अभिवादन भी। 2 दिनों के बाद अब आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।